पिछले सोमवार इस वक्त सूरत में था, सत्संग हॉल में बैठ चुका था, लेकिन सत्संग अभी शुरू नहीं हुआ था। वहां उन्होंने दैनिक सत्संग का समय प्रातः 8 से 9 बजे रखा हुआ है। दैनिक सत्संग था, मुख्य सत्संग तो 18 मार्च को था। सत्संग के बाद दीक्षा थी। सभी के लिए वे सत्संग था, सभी दीक्षा के लिए आमंत्रित थे। उससे पहले दिन शनिवार को भी दीक्षा हुई थी। वह दीक्षा सभी के लिए नहीं थी, सत्संग भी नहीं था, सिर्फ दीक्षा थी। कुछ साधकों ने पहले जाके वहां पर, वहीं के साधक कुछ बाहर से आए हुए थे, हैंडीकैप्ड बच्चों को संपर्क किया, उनके टीचर्स, उनके इंस्ट्रक्टर्स, अध्यक्ष महोदय, उनसे संपर्क किया। हमारे साधकों की बातचीत से वे बहुत प्रभावित हुए। अतएव सभी के सभी दीक्षा के लिए तैयार। 750 बच्चे, जिसमें अध्यक्ष महोदय मिस्टर कन्नूबाई भी थे, उनकी नेक्स्ट श्रीमती हैं या कुमारी मुझे पता नहीं, रेखा कभी थी, मोदी जी की पीएस होती थी। कुछ जीवन में ऐसा हुआ, छोड़ दिया, मानो बहुत देर की बात नहीं, छोड़ के तो ये काम ले लिया। पिल्ले के लिए आए थे, दीक्षा के पहले पिल्ले थे मुझे। देवी का कहना था, हैंडीकैप्ड की पीड़ा को समझना है तो हैंडीकैप्ड ही समझ सकेगा। मैं हैंडीकैप्ड हूं, रेखा जी हैंडीकैप्ड, मिस्टर कन्नूबाई बचपन से ही पोलियोग्रस्त, जिंदगी भर आज तक व्हीलचेयर पर चलते हैं। मैंने पहली बारी देखी कोई व्हीलचेयर जो मशीन से चलती थी। पहले तो ऐसे ही घुमाने वाली होती थी जो मैंने देखी हुई थी, लेकिन ये मशीन से, मोटर से चलती थी। बहुत सुंदर कंट्रोल था उनका। जब कमरे में मिलने के लिए आए तो मिस्टर कन्नूबाई व्हीलचेयर पर ही थे। मैं तो अपने जैसा बिस्तर होता है वहीं बैठा हुआ था। वे नीचे बिठाने के लिए दो लोग उनके साथ, उन्होंने उठा के तो नीचे बिठाया। मैं तेरे सामने कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। राष्ट्रपति अवार्ड विनर, न जाने कितने अवार्ड्स उन सज्जन महोदय को मिले हुए हैं, बड़े सात्विक। एक कन्या भी मिलने के लिए आई, पूजा, 15 साल की बच्ची, खूबसूरत, मानो जवानी में प्रवेश कर चुकी है। आके बैठ गई मेरे पास। मैंने कहा, बेटा क्या हुआ है आपको, किस किस की कथा सुनता, किस किस की व्यथा सुनता। 750 के 750 ही ऐसे थे। कब तक देवी और सज्जनों को या अपने हृदय को थाम सकता है। तनिक सोचो मेरी कठिनाई को, क्या बीतती होगी उस वक्त मेरे दिल पर जब ऐसों को देखता हूं। तो बेटी क्या हुआ है आपको, देखने में सब कुछ ठीक ठाक चलती आई है, मेरे पास चल के आई है, मुझे कुछ पता भी नहीं चला कि क्या तकलीफ है इसको, एक शीज हैंडीकैप्ड। अपनी दोनों बाहें दिखाई, कुछ मुझे देखने से भी पता लग गया कि इसका ये हिस्सा जो है ये काम संभवतया नहीं करता। अपने मुख से कहा, यहां तक ये मेरे दोनों बाजू काम करते हैं, उसके नीचे ये काम नहीं करते। अतएव मैं कुछ इंच में कहा, हाथ मिलाओ मेरे से। हाथ नहीं मिला सके। ये जगह इतनी कैसी विचित्र डिजीज है, कैसा विचित्र है सब कुछ। हम कल्पना भी नहीं कर सकते जिन चीजों की वे सब देखने को मिलती हैं, मानो परमात्मा दिखाता है। यहां तक बिन कविता पढ़ते हो, स्कूल जाते हो, इन 750 के सारे सभी के सभी बच्चे थे, वही रह गए जिनकी उस दिन 10+2 की परीक्षा थी या 10th की परीक्षा थी। बच्चे सब परीक्षा देने गए हुए थे, अतएव उन्होंने दीक्षा नहीं ली। बाकी सबने A to Z जितने भी थे सबने दीक्षा ली, छोटे बड़े इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी एज सब बैठे, और सब बड़े तत्पर थे दीक्षा लेने के लिए। तो कन्नूबाई पर उनसे बहुत प्रभावित हूँ कि उनके मन में कैसे ये प्रेरणा हुई कि मुझे दीक्षा लेनी है। वहां तो शंकराचार्य आते हैं, बड़े बड़े आते हैं, बड़े बड़े संत महात्मा उनके पास आते हैं। मतलब मानो जो भी कोई सूरत जाता है वहां जरूर जाता है और कुछ ना कुछ देके आता है। उन सब से जो कुछ मिलता है लेते हैं, ले लेते हैं, काम ही है उनका, उन्हें अपना काम चलाना है। किसी ने गाय दी, दुधारी गाय दी तो गाय दी, किसी ने कुछ दिया, सब जैसा भी पैसा दिया पैसा, किसी ने कोई मशीन दी मशीन, जैसा कुछ भी मिलता है। बहुत चकित हुआ और गर्वित भी महसूस किया, दीक्षा यहां से ली। स्वामी जी महाराज पर कितना गर्व महसूस होता है। बड़े बड़े संत महात्मा शंकराचार्य लेवल के वहां गए हुए हैं, लेकिन उनसे दीक्षा किसी से नहीं ली। गाय तो ली, पैसे लिए हैं उनसे, मशीनें ली हैं उनसे, लेकिन दीक्षा नहीं ली। दीक्षा यही से ली। रेखा तो कहती थी, मैं तो शुरू से ही राम राम जपने वाली हूँ। तो परमेश्वर ने यहाँ आगमन हुआ है श्री राम षट्प का, तो मैं कहूँगी कि मेरे लिए, मेरे अंदर तड़प थी कि मुझे राम नाम की प्राप्ति होनी चाहिए, वे आज हो गई। रेखा भी व्हीलचेयर पर ही चलती है, लेकिन वह थोड़ा बहुत चल लेती है, बैठ जाती है। उसे साधना सत्संग के लिए आमंत्रित करके आया था, आप एक बार आ जाओ, सब प्रबंध होगा वहां पर आपका, आपको किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी। देखो जब बेचारी को समय मिलेगा तो उसका निकलना बहुत मुश्किल, शी सो इन्वॉल्व विद चिल्ड्रन। इतना सुंदर सारा हॉस्पिटल कहिए, आश्रम कहिए, कुछ भी कहिए, जो भी आप उसको कहना चाहें, फिजियोथेरेपी सेक्शन वहाँ है, हॉस्पिटल वहाँ है, स्कूल वहाँ है, किचन वहाँ है, बहुत सुंदर सब कुछ ही, बहुत सुंदर साफ सुथरा। डिसेबल वेलफेयर ट्रस्ट ऑफ इंडिया संस्था का नाम रखा हुआ है, वी मेक देम एबल, आगे लिखा है वी मेक देम एबल। डिसेबल लिखा है पहले, डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन ट्रस्ट ऑफ इंडिया, वी मेक देम एबल। ये सब कुछ देख के बहुत सुंदर लगा। यही कहना होगा ना दिव्य सचरों, शिक्षा क्या मिलती है, हिमदर्दी तो बहुत है, सहानुभूति तो बहुत है इन बच्चों के साथ। इतनी सी मैं तो कन्या कहूंगा इस हाइट की, एक ही, बाकी तो सब गए हुए थे कहीं, मिले नहीं मुझे, कहीं क्लासेस में थे या कहीं, एक इतनी सी बच्ची अपने बेड पर ही बैठी हुई थी। मैं तो उसको बच्ची ही, रेखा ने मुझे मिलाया। हाइट उसकी इतनी है लेकिन उसकी एज तो 20-25 साल की आयु। मुझे कैंटकी ये अपने हाथ से कुछ नहीं कर सकती, इसका सब कुछ हम ही करते हैं। जैसे पूजा, मैंने उससे कहा किताबें ले जानी होती हैं, कोई बैग ले जाना होता है तो कैसे करते हो? तो यहाँ से उठाते, ये तो काम करता है, ये काम करता है, यहाँ से सब कुछ उठाती हूँ, यहाँ से सब कुछ करती हूँ, आगे के हिस्से काम नहीं करते। क्या क्या आदमी कहे, परमेश्वर क्या क्या करवाता है, यही कहना होगा ना दिव्य सोचना। कर्म करते वक्त ही आदमी को सोचना चाहिए, हो क्या कर्म, फिर कुछ नहीं हो सकता, फिर यही होगा जो उनके साथ हुआ हुआ है, जो हमारे साथ होता है। कर्म करते वक्त ही सोचने का समय है, उसी वक्त कुछ किया जा सकता है, उसके बाद यदि कर्म हो गया तो फिर कुछ नहीं हो सकता। हाथों को लग गई हथकड़ी और पाँव को पड़ गई बेड़ी, फिर कुछ नहीं हो सकता। बेईमानी करनी है तो भुगतनी पड़ेगी, हेरा फेरी की है तो भुगतनी पड़ेगी, व्यभिचारी की है तो भुगतनी पड़ेगी, कोई छुटकारा नहीं, कोई छुटकारा नहीं। काश ये राम नाम उन्हें कहीं पहले मिल गया होता, जिस वक्त कर्म करने थे तो बहुत बचाव हो सकता था, लेकिन जब तीर निकल गया फिर तो कुछ नहीं हो सकता। अब आगामी जीवन तो सुधरेगा, आगामी जिसे परलोक कहा जाता है वह तो सुधरेगा, लेकिन इसका क्या होगा, इसका क्या करना होगा? ये तो जिंदगी भर का गले में ढोल पड़ गया, इसको तो बजाना ही पड़ेगा, कुछ नहीं किया जा सकता। यही शिक्षा दे के वहां से निकला। आदमी की सोच बहुत सुदृढ़ होनी चाहिए, उसे कर्म करते वक्त सोचना चाहिए, बस उसके बाद कुछ नहीं होता। आज का प्रसंग शरणागति पर, विभीषण बहुत समझदार है, बहुत सोच विचार के तो उसने स्टेप लिया है, धन छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, राज्य छोड़ दिया, घर बार छोड़ दिया। ये कोई छोटी बात नहीं जो उसने किया है, सब कुछ होते हुए छोड़ा है, उसे जबरदस्ती नहीं, उसे निष्कासित किया गया है, उसे अन्याय सहन नहीं हुआ, वे न्याय के पक्ष में, उसका बड़ा भाई दिशानंद अन्याय के पक्ष में। न्याय और अन्याय दोनों कैसे टिक सके? परमेश्वर के खेल देखिए, कर्मी देखिएगा, अन्याय को छोड़ दिया है, न्याय का पक्ष लेते हुए भविष्य घोषणा करके आया है, मैं रघुनाथ के चरण शरण में जा रहा हूं। व्हाट ए वंडरफुल डिसीजन! आदमी सिर्फ बेटा इसी वक्त सोच सकता है, एक दफा हो गया तो फिर उसके बाद कुछ नहीं हो सकेगा, उसके बाद तो भुगतान ही भुगतान है। व्हाट ए वंडरफुल डिसीजन भविष्य जी महाराज है स्टेक, मैं रघुनाथ के चरण शरण में जा रहा हूं। कल भी थोड़ी चर्चा आपने शरणागति पर ही सुनी थी, परमेश्वर की कृपा आज भी शरणागति पर ही चर्चा है। कितनी आनंददायी स्थिति है, नदी के किनारे एक व्यक्ति बैठा है, दो तीन व्यक्ति लगा लीजिएगा, एक व्यक्ति अपने बाहुबल से तैर के पार चला जाता है, एक मार्ग है, अपने बाहुबल से, अपनी तपस्या से, अपने त्याग से, अपनी साधना के बल से, अपने बाहुबल से, बाहुबल अर्थात अपने बल से उसे तैरना आता है, तैर के पार चला जाता है। जहां परमात्मा बैठे, पार अर्थात परमात्मा, भवसागर क्या है उसमें, वहां इसे पार करने के बाद परमात्मा मिलते हैं, ऐसी ही मान्यता है ना। तो नदी कहिए, सागर कहिएगा, ये व्यक्ति एक ऐसा है जो अपने बहुबल पर, अपने बल पर तैर के पार जा सकता है। दूसरा व्यक्ति ऐसा है, उसने कोई और तरह की कमाई करी हुई है, वह किश्ती में बैठता है, मोटर बोट में बैठता है, पार चला जाता है, उसकी और तरह की कमाई है। जो असमर्थ है, जो हर प्रकार से गरीब है, ना उसने नाम की कमाई करी है, ना उसके पास कोई योग की सिद्धि, ना उसने कोई सत्कर्मों की पूंजी इकट्ठी की है, ना ही उसके पास सद्गुण है जो उसे प्रेरणा दे सके कि वह सत्कर्मों की पूंजी इकट्ठी करे। यदि ये कहा जाए हर प्रकार से कंगाल तो गलत नहीं, हर प्रकार से दरिद्र वे क्या करे। इतना ही करना है देवी सज्जनों, शरणागति की महिमा क्या है, इतना ही करना है। ये सब कुछ सच्चे दिल से स्वीकार करो कि मैं ऐसा हूं। जब कहा जाता है निर्बल के बलराम, तो निर्बल हमें बनना है, निर्बल हमें घोषित करना है, निर्बल हमें अपने आप को स्वीकार करना है, निर्धन हमें अपने आप को स्वीकार करना है। ये मात्र बनने से चीजें नहीं आती, स्वीकृति इसकी होनी चाहिए, दंभ नहीं होना चाहिए इसमें, पखंड नहीं होना चाहिए, सच्चे हृदय से यह स्वीकृति होनी चाहिए। मुझ जैसा निर्धन, मुझ जैसा निर्बल परमात्मा इस संसार में कोई नहीं, मुझ जैसा दुर्गुणी कोई नहीं है, मेरे अंदर किसी प्रकार का कोई गुण नहीं। ये स्वीकृति बड़ी जेन्युइन स्वीकृति आपकी होनी चाहिए। अतएव मैं तो असमर्थ हूं, मेरे पास न बाहुबल है कि मैं तैर के आपके पास आ सकूं, मेरे पास न कोई और किसी प्रकार की पूंजी है कि मैं उसका प्रयोग करके तो आपके पास पहुंच सकूं, मैं असमर्थ हूं जैसे केवट, मैं असमर्थ हूं जैसे शबरी, मैं असमर्थ हूं जैसे सुदीक्षित, इनके पास भी तो अभी पहुंचे हो, मैं असमर्थ हूं जैसी अहिल्या, इनके पास भी तो आप पहुंचे हो। सच मानो मेरे राम, मेरी स्थिति भी ऐसी ही है। ऐसी अगर आपकी जेन्युइन स्वीकृति है, असमर्थता का बोध है आपको, और परमात्मा इस बात को, इस यथार्थता को स्वीकार कर लेते हैं, फिर क्या होता है, जिसके पास जाना है वही चल के आता है आपके पास। ये शरणागति की महिमा है। चल कहाँ चलना है तुझे, जहां पहुंचना है तुझे वही तेरे पास आ गया है, ये शरणागति है। देह अभिमान का 400 कोस का सागर इधर से हनुमान जी ने पार किया तो परम शांति मां सीता को पा लिया, उधर से विभीषण जी ने पार किया तो इधर आगे प्रभु राम को पा लिया। ये बीच में सागर, इसी में हम सब कुछ करते हैं। देह भाव, इसी देह भाव में हम जिंदगी भर लुटे रहते हैं, डूबे रहते हैं, इससे निकलना बहुत कठिन। जो निकल गया वो पा गया। समय हो गया है सर, यहीं समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद।